ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक संख्या 3। तो ये श्लोक जो है ये गाया नहीं जा सकता, ये प्रोज फॉर्म में है, पोएट्री में नहीं है, तो इसलिए हम इसको पहले शब्दार्थ करते हैं। अथा इस प्रकार च भी यत्र जिसमें कौन रूपी कहा कुटुंबी जन दार अपत्य आदया स्त्री तथा संतान इत्यादि नाम ना केवल नाम के द्वारा कर्मणा अपने आचरण के द्वारा वृक्ष श्रृगाला भेड़िया तथा श्रृंगाला एव निश्चित रूप से अनिच्छता ऐसा मनुष्य जो अपने धन को व्यय करने का अनिच्छुक है। अपि निश्चय ही कर्दस्य अत्यंत कृपण प्राणी कंजूस का कुटुंब बिना परिवार के प्राणियों से घिरा हुआ पूर्णक वत मेमने की भांति संरक्ष्यमाणां यद्यपि सुरक्षित है मिश्यत जो देख रहा है अपि भी ही हरंती बलपूर्वक छीन लेते हैं। तो इस श्लोक को मैं बोलता हूं। अथ च यत्र कौंडुपिका तारा दारा अपत्य आदयो नामना कर्मणा वृक्षगाला एवा इच्छन्तोपि कर्दस्य कुटुंबिना उणक वत् संरक्षमाणं मिषतोपि हरंती। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। तो अनुवाद इस प्रकार है, हे राजन, इस भौतिक जगत में स्त्री पुत्र आदि नाम से पुकारे जाने वाले कुटुंब जन कुटुंबी जन वास्तव में भेड़ियों तथा श्रृंगालों की भांति व्यवहार करते हैं। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है, किंतु भेड़िये तथा लोमड़ियां उन्हें बलपूर्वक उठा ले जाते हैं। इस प्रकार यद्यपि कंजूस पुरुष सतर्कता पूर्वक अपने धन की चौकसी रखना चाहता है, किंतु उसके पारिवारिक प्राणी उसकी संपत्तियों को उसके जागरूक रहते हुए भी बलपूर्वक छीन लेते हैं। तात्पर्य, हिंदी के किसी कवि ने कहा है, दिन को डाकिनी रात को बाघनी पलक पलक लहू चूसे। पत्नी दिन में जादूगरनी के तुल्य और रात्रि में बाघनी की तरह होती है। उसका एकमात्र कार्य होता है दिन रात अपने पति के खून को चूसना। आप घबराइए मत, ये बात आपके ऊपर लागू नहीं होती। अब श्लोक मेरे को ऐसा दिया गया है, इसलिए आज अपने पत्नी को घर भेज दिया। हमने कहा आप घर जाके आराम कीजिए। तो उसका एकमात्र कार्य होता है दिन रात अपने पति के खून को चूसना। दिन भर पति द्वारा खून पसीना एक करके अर्जित धन गृहस्थी के खर्चों में चला जाता है। रात्रि में यौन सुख के कारण पति वीर्य रूप में अपना रक्तपात करता है। इस प्रकार उसका रक्त अपनी पत्नी द्वारा अहर्निश चूसा जाता है, किंतु वह इतना पगलाया रहता है कि वह उसका बहुत अच्छी तरह भरण पोषण करता है। इसी प्रकार बच्चे भी भेड़िए श्रृंगार तथा लोमड़ियों के तुल्य हैं। जिस प्रकार भेड़िए श्रृंगार व लोमड़ियां चरवाहे के सतर्क रहने पर भी मेमनों को उठा ले जाती है, उसी प्रकार बच्चे भी पिता का धन ले लेते हैं। यद्यपि इस धन की देखरेख पिता स्वयं करता है, इस प्रकार कुटुंबी जन भले ही पत्नी तथा संतान कहलाते हों, किंतु वास्तव में वे हैं लुटेरे ही। ओम अज्ञान तिम्रादस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलताम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम् ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेयम् श्री गुरो श्री उत्पत्कमलम् श्री गुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं सागर जातं सैगणरघुनाथितं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान सैगणललिता श्री विशाखानमिता। नमो विष्णु पादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्णा चैतन्या नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत आपका स्वागत है श्री वृंदावन धाम में, भागवतम कक्षा में। आप लोग आए श्री वृंदावन से और बहुत भक्तजन बाहर से भी आए हुए हैं, तो आप सभी का पुनः पुनः स्वागत करते हैं। तो ये जो आज का जो श्लोक का जो विषय है, ये भौतिक संसार जो भोग का एक विकट वन है, इसको जो बताया गया भवावटी का वर्णन, किस तरीके से मनुष्य इस संसार रूपी जंगल में आकर के फंस जाता है। और ये जो अध्याय है, ये संवाद चल रहा था पिछले अध्याय में जड़ भरत के द्वारा और राजा रघुगण के द्वारा। तो राजा रघुगण तो संतुष्ट हो गए सुन करके, लेकिन अब परीक्षित महाराज पुनः सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं कि आप इस बारे में थोड़ा और हमको जरा विस्तृत रूप से बताइए। वास्तव में परीक्षित महाराज हमारे लिए इस सारे दृष्टांत को विस्तार से हमको सुनाना चाहते हैं कि ये संसार क्या है, ये वन क्या है, ये पत्नी, ये बच्चे, है ना। यहाँ प्रभुपाद ने जो व्याख्या करी है ना, तो इसको दोबारा से हम एक दफा देखते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि हे राजन, कौन बता रहा है, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, इस भौतिक जगत में स्त्री और पुत्र आदि नाम से पुकारे जाने वाले कुटुंब के जीव, कुटुंबी जन वास्तव में भेड़ियों तथा शिंगालों की भांति व्यवहार करते हैं। या इंग्लिश के जो भागवतम है उसमें शेर और भेड़िया बताया गया है। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है। तो चरवाहा यहां पर कौन हुआ, चरवाहा यहां पर हुआ जो परिवार का जो मुखिया है, कुटुंब का जो मुखिया है, उसको उसकी तुलना किससे की गई है, चरवाहे से की गई है। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है, और भेड़ क्या है, भेड़ हो गया चरवाहे का धन। तो जैसे चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा, जितनी उसके अंदर शक्ति है उस शक्ति के अनुसार करना चाहता है, इसी प्रकार जो संसार में कुटुंब का जो मुखिया है वो अपने धन की रक्षा अपनी यथाशक्ति के अनुसार करना चाहता है। ये इसका इसको इस तरीके से इसकी उपमा दी गई है। तो आगे बताया गया है, किंतु भेड़िए तथा लोमड़िया उन्हें बलपूर्वक उठा ले जाते हैं। अब उसको रक्षा तो कर रहा है चरवाहा, किसकी, अपने भेड़ों की, इसी प्रकार से मुखिया अपने धन की, लेकिन क्या बताया गया, भेड़िया, भेड़िया या फिर और हिंसक जीव जो हैं वो क्या करते हैं, उन भेड़ों को बलपूर्वक उठा करके ले जाते हैं। तो यहां उपमा ये दी गई है कि जो भेड़िया और जो लोमड़िया हैं, ये आपकी पुत्र आदि, पुत्र आदि में आपकी पत्नी भी आ गई, आपके पुत्र भी आ गए, आपके पौत्र भी आ गए, जो भी आपके आश्रित हैं वो सब क्या करते हैं, बलपूर्वक आपका धन खोज के ले जाते हैं, आप संभालते रहो, बांध के, यहां रखा था कहां गया, कौन ले गया। तो इस प्रकार यद्यपि कंजूस पुरुष सतर्कता पूर्वक अपने धन की चौकसी रखना चाहता है, किंतु उसके पारिवारिक प्राणी उसकी समस्त संपत्तियों को उसके जागरूक होते हुए भी बलपूर्वक छीन के ले जाते हैं। देखिए, ये है संसार। तो जो भी भक्ति में आते हैं ब्रह्मचारी लोग, उनको ये अध्याय जरूर पढ़ाया जाता है, संसार का ये रूप उनको जरूर दिखाया जाता है कि भाई आप इसको अच्छी तरह समझ करके फिर इसको ऑन ज्वाइन करना। तो दिलचस्प है श्लोक और इस पर व्याख्या करना श्रील प्रभुपाद की और गुरुजनों के कृपा से, भगवान शक्ति प्रदान करें, क्योंकि मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ, कहीं ऐसा नहीं मेरे लिए ही दरवाज़ा बंद कर दिया जाए कि प्रभु जी क्या बोल के आए हो। ठीक है, तो श्लोक में कहीं कोई मिथ्या नहीं है। श्रीमद् भागवतम एक महासत्य पुराण है और शिला प्रभुपाद की वाणी महासत्य है। हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, हमें कबूतर की तरह अपनी आंखों को बंद रख के नहीं बैठना चाहिए कि बिल्ली हमको नहीं देख रही। तो वास्तव में इस श्लोक को समझने के लिए हमारे को एक बात को अवश्य समझना चाहिए कि संसार में देखिए दो प्रकार के जीव हैं, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। जो जीव भगवान को भूलकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और भोग करना चाहता है, कृष्ण भूलिया से जीव, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थित माया झपटिया धरे। तो जो जीव अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, भोग करना चाहता है, उसको कहा जाता है नित्य बद्ध जीव। और एक होते हैं नित्य मुक्त जीव। इह यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखला स्वप्य अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण की सेवा करता है वह इस भौतिक संसार में रहकर भी नित्य मुक्त रहता है। तो बड़ा स्पष्ट है कि इस जीव में, इस संसार में नित्य बद्ध जीव भी हैं और नित्य मुक्त जीव भी है, लेकिन संख्या किसकी ज्यादा है? कौन से जीव ज्यादा है? नित्य बद्ध जीव ज्यादा है। तो शिला प्रभुपाद तो यहां जो बात कर रहे हैं वो नित्य बद्ध जीवों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया है, चाहे वो नित्य मुक्त हो चुके हैं चाहे नित्य मुक्त होने के प्रयास पे। तो कदाचित उसकी व्याख्या तो यहीं नहीं हो रही है, इसीलिए मैं माताओं बहनाओं से और सभी प्रभु जी से ये आशा करता हूँ कि आप प्रभुपाद के इस आश्रय को समझ गए होंगे, और आपके मन में अगर कोई भ्रांति है तो उसको आप निकाल दीजिए। तो इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को 11वें स्कंद में एक कथा सुनाते हैं, अवंती ब्राह्मण का गीत। तो उसको हम थोड़ा सा गाएंगे या श्लोक के साथ उसको बोलने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवंतीशु ध्वजा का चेत आसीत आड्यम श्रेया आड्यतमा श्रेया वार्तावृत्ति कद्यस्तु कामी लुब्धो तिकोपना। भगवान कहते हैं उद्धव को, अवंती देश में किसी समय कोई एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धनी था और समस्त ऐश्वर्यों से मालामाल था तथा व्यापार कार्य में लगा हुआ था, किंतु वह अत्यंत कंजूस कामी लालची तथा क्रोधी था। ज्ञातयो त्यस्तस्य वांगमात्रेणापि नार्चिता शून्यावस्था आत्मापि काले कामेर अनर्चिता। उसका घर धर्म तथा वैद्य इंद्रिय तृप्ति से विहीन होने से, उसमें पारिवारिक जनों तथा अतिथियों का ठीक से, यहाँ तक कि वाणी से भी आदर नहीं होता था। वह समुचित अवसरों पर अपने शरीर की भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होने देता था। द्वेशीलस्य कर्दस्य दोहन्ते पुत्र बांधवा दारा दुहितरो भृत्या विचणा ना नाचरा नाचरन प्रियम। चूंकि वह हृदय से कठोर तथा कंजूस था, इसके लिए उसके पुत्र, उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी, उसकी पुत्रियां तथा नौकर उसके प्रति वैर भाव रखने लगे। ऊब जाने के कारण वे उससे कभी भी स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। यानी जो अवंती ब्राह्मण था वो बहुत कंजूस था, और जो भी उसके आश्रित थे तो उनको वो कुछ धन देता नहीं था खर्च करने के लिए, तो सब उसके प्रति जो है स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे और सब ऊब गए उस ब्राह्मण से। तस्य एवं यक्षवित्तस्य च्युतस्यो भयलोकता धर्म काम विहीनस्य चुक्रधु पंचभागिना। इस तरह पांच पारिवारिक यज्ञों के अधिष्ठाता देव उस ब्राह्मण से क्रोध हो उठे, जो कि कंजूस होने के कारण अपनी संपत्ति की रखवाली यक्ष की तरह करता था, और जिसका न इस जगत में न ही उस लोक में कोई अच्छा गंतव्य था, और जो धर्म तथा विषय भोग से पूरी तरह विहीन हो गया था। तद अवध्यान विस्त्रस्तस पुण्य स्कंधस्य भूरिदा अर्थोपि अगच्छिन्न निधनम भ्रायाम परिश्रमा भ्रमयास परिश्रमा। हे वदान्य उद्धव, इन देवताओं की उपेक्षा करने से उसके पुण्य तथा उसकी सारी संपत्ति का भंडार खाली हो गया। उसके बारंबार निशेष प्रयास द्वारा संचित भंडार पूरी तरह क्षय हो गया। ज्ञातो जिग्रहु किंचित अस्य उद्धवा देवता कालता किंचित ब्रह्मा बंधोर न पार्थिवात। हे उद्धव, इस तथा कथित ब्राह्मण का कुछ धन उसके संबंधियों ने, कुछ चोरों ने, कुछ भाग्य ने, कुछ काल के फेर ने, कुछ सामान्य जनों ने तथा कुछ सरकारी अधिकारियों ने हथिया लिया। धन तो खूब था, लेकिन न तो अपना इंद्रिय भोग में अपनी इंद्रिय तृप्ति करी, न परिवार जनों को धन दिया, और समय आने पर उस ब्राह्मण का धन सब लूट के ले गए। कुछ संबंधी लूट के ले गए, कुछ चोर ले गए, कुछ भाग्य के कारण, कुछ काल के फेर में, और बचा कुचा सरकारी अधिकारियों ने उसके ऊपर कर लगा दिया। स एवं द्रविणे नष्टे धर्म काम विवर्जिता उपेक्षितश्च स्वजनेश्च चिंताम आप दुरत्ययाम। अंत में जब उसकी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई, तो वह ब्राह्मण जिसने कभी भी धर्म या इंद्रिय भोग नहीं किया था, अपने पारिवारिक जनों से उपेक्षित किया जाने लगा। इस प्रकार वह असहनीय चिंता का अनुभव करने लगा। तस्य एवं ध्यायतो दीर्घम नष्ट रायस तपस्विना खिद्यतो बाष्पकंठस्य निर्वेदा सुमान अभूत। अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा तथा शोक हुआ। उसका गला आंसुओं से रुंध गया। वह दीर्घ काल तक अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। तब उसके मन में वैराग्य की प्रबल अनुभूति जागृत हुई, और ब्राह्मण जो है, अब ब्राह्मण बोलेगा, स चाहेदम अहम अहो कष्टम वृथात्मा मे नुता पिता न धर्माय न कामाय यस्य अर्थाय स ईदृशा। ब्राह्मण इस प्रकार बोला, हाय क्या दुर्भाग्य है मेरा, मैंने उस धन के लिए इतना कठिन परिश्रम करते हुए व्यर्थ ही अपने को कष्ट पहुंचाया, जो न तो धर्म के लिए था न ही भौतिक भोग के लिए था। प्राणार्था कदर्ण्यानम न सुखाया कदाचना इह चात्म उपतापाया मृतस्य नरकाय च सामान्यतः कंजूसों की संपत्ति उन्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाती। इस जीवन में यह उनका आत्मपीड़न करती है और उनके मरने पर उन्हें नरक भेजती है। यशो यश यशो यश विनाम शुद्धम शलाघया ये गुणीनाम गुणा लोभ स्वलपो भी तान तान हन्ति श्रुतो श्रुत्रो रूप विपेपितम। प्रसिद्ध व्यक्ति की जो भी शुद्ध ख्याति होती है और गुणवान में जो भी प्रशंसनीय गुण होते गुण रहते हैं वे किंचित मात्र लालच से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह आकर्षक शारीरिक सौंदर्य रंच मात्र श्वेत कुष्ठ से नष्ट हो जाता है। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यय नाश उपभोग आयासस त्रासस चिंता भ्रमो निर्णाम। सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई प्राप्ति वृद्धि रक्षा व्यय हानि तथा उपभोग में भारी श्रम भय चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। तो ये ब्राह्मण जो है ये सारी अपने जो मन की उसकी जो व्यथा है वो सुना रहा है कि मैंने कितने श्रम से उसमें मेरे को क्या नहीं करना पड़ा, कमाई में रक्षा व्यय हानि उपभोग श्रम भय चिंता हर तरीके से मेरे को जो है दिन रात उसी के बारे में सोचता रहा। लेकिन क्या हुआ, इस्तेयम हिंसा नितम दम्भा काम क्रोधास्मयो मदा भेदो वैरम विश्वास संस्प्रधा व्यवसानानी च एते पंच दशानार्था हृत्थ मूला मता निर्णाम तस्मात् अनर्थम अर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरस्त त्यजेत। चोरी हिंसा असत्य भाषण दोहरा बर्ताव काम क्रोध चिंता दर्द झगड़ा लड़ाई शत्रुता अविश्वास ईर्ष्या स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट जुआ खेलना तथा नशा करना ये 15 दुगुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्यों को दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये दुर्गुण हैं किंतु लोग भ्रमवश इनको महत्व देते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना हो वह अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। भिद्यन्ते भ्रातरो द्वारा पितरा सुहृदस्तथा एकास्निग्धा काकिणा सद्य सर्वे रयाकृता। यहाँ तक कि मनुष्य के सगे भाई पत्नी माता पिता तथा मित्र जो उससे प्रेम से बद्ध थे तुरंत ही अपना स्नेह संबंध तोड़ लेते हैं और एक कौड़ी के कारण शत्रु बन जाते हैं। देखिए ये कौन बता रहे हैं, भगवान कृष्ण और अवंती ब्राह्मण की कथा चल रही है और अवंती ब्राह्मण अपना साक्षात्कार अब बता रहा है कि देखो हाय हाय मेरे साथ क्या हो गया, सारे मेरे रिश्तेदार मेरे शत्रु बन गए हैं। तो ये संबंधी तथा मित्रगण थोड़े से भी धन के लिए अत्यंत उद्वेलित होते हैं और क्रोध से आग बबूला बन जाते हैं। प्रतिद्वंदी बनकर वे तुरंत सारी सद्भावनाएं त्याग देते हैं और क्षण भर में ही उसका परित्याग करके उसकी हत्या तक की नौबत आ जाती है। ये धन कभी कभी संसार में ऐसा हो जाता है कि इसके कारण कई प्रकार से हत्याएं हो जाती हैं। स्वर्ग अपवर्गयोर द्वारम प्राप्य लोकम इमं पुमान द्रविणे को नुषजेता मृत्योर अनतस्य धामनी। ऐसा मृत्यु व्यक्ति कौन होगा जो इस मनुष्य जीवन को जो कि स्वर्ग तथा मोक्ष का द्वार है प्राप्त करके भौतिक संपत्ति रूपी व्यर्थ के धाम के प्रति अनुरक्त होगा। और आगे बताया, देव ऋषि पितृभूतानी ज्ञातिन बंधुश्च भागिना संविभज्य च आत्मानाम यक्ष वित्त पत्यताधा। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को उचित भागीदारों, संपत्ति को उचित भागीदारों, कौन कौन से भागीदार हैं, देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा सामान्य जीवों में तथा अपने निकट संबंधियों में, ससुराल वालों और स्वयं में वितरित नहीं कर देता, वह मात्र यक्ष की तरह अपनी संपत्ति को बनाए रखता है और अधोगति को प्राप्त होगा। विवेकशील व्यक्ति अपने धन यौवन तथा बल को सिद्धि प्राप्त करने में लगाने में सक्षम होते हैं, किंतु मैंने आकुल होकर अपनी संपत्ति के संवर्धन के व्यर्थ के प्रयास में ही इसको लुटा दिया। अब वृद्ध हो चुकने पर मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्धिमान मनुष्य संपत्ति पाने के लिए व्यर्थ के सतत प्रयासों से कष्ट क्यों भोगे? निसंदेह यह सारा संसार किसी की माया शक्ति से अत्यधिक मोहग्रस्त है। सुनिए बस, जो व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में जकड़ा हो, उसके लिए धन या उस धन को देने वाले, इंद्रिय तृप्ति अथवा इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले या किसी प्रकार का सकाम कर्म जो उसे भौतिक जगत में फिर से जन्म दिलाए, इनसे क्या लाभ है? समस्त देवों से युक्त भगवान हरि अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं, उन्होंने ही मुझे इस कष्टमय स्थिति तक पहुंचाया है। और वैराग्य का अनुभव करने के लिए बाध्य कर दिया है, जो इस भवसागर को पार कराने की नाव है। यदि मेरे जीवन का कोई समय शेष है तो मैं तपस्या करूंगा और अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम कर दूंगा। अब मैं और अधिक भ्रम में न पड़कर जीवन के समग्र आत्महित में लगकर अपने आप में तुष्ट रहूंगा। इस तरह इन तीनों लोकों के अधिष्ठाता देवता मुझ पर कृपा करें। निसंदेह महाराज खटवांग को क्षण भर में वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया था। अब जो है श्री भगवान ने कहा, वह दृढ़ संकल्प वाला सर्वोत्तम अमंती ब्राह्मण अपने हृदय की इच्छा रूपी ग्रंथियों को खोलने में समर्थ हो गया, तब उसने शांत तथा मौन सन्यासी साधु की भूमिका ग्रहण कर ली। तो ये जो कथा है अभी विस्तार से है, अभी हम उसमें से कुछ ही प्रसंग हमने उठाया है। तो भगवान कृष्ण जो है इस अवंती ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं, और किस प्रकार से अवंती ब्राह्मण जो है दरिद्र हो गया और उसके परिवारजनों ने सब ने उसको क्या है लूट खाया। तो आज का जो श्लोक है, आज का श्लोक भी इसी प्रकार से ही है कि जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जो संतान है, पत्नी है, अगर ये भोगों में लगे हुए हैं, अगर ये भगवान को शरणागत नहीं है, तो ये संसार में जितने भी हम जिसको अपना संतान मानते हैं, पुत्र पुत्रादि सब मानते हैं, तो ये हमारी ऐसी गति होने की संभावना बनी रहती है, ऐसी संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए जब शिला प्रभुपाद के हम जीवन को देखते हैं, जीवन चरित्र को देखते हैं, तो शिला प्रभुपाद के परिवार जनों से भी शिला प्रभुपाद को कोई सहयोग नहीं मिला। शिला प्रभुपाद की चाहे संतान हो, शिला प्रभुपाद की पत्नी हो, और अंततः उन्होंने काफ़ी प्रयास करने के बाद शिला प्रभुपाद ने घर को त्याग दिया, अपनी संतान को त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया। और प्रयास कर ही रहे थे, उनका संघर्षपूर्ण जीवन चल ही रहा था, वो कलकत्ते से दिल्ली आ गए, दिल्ली से यहाँ पर भगवत दर्शन बैक टू गॉडहेड मैगजीन का प्रकाशन करने लगे, और श्री वृंदावन धाम में आकर के रहने लगे। श्री वृंदावन धाम से दिल्ली, दिल्ली से श्री वृंदावन धाम, ऐसे उनकी दिनचर्या काफ़ी समय तक बनी रही। उनका वो मोह दूर हो गया था, जो हमको ये हमारे को संसार में हम मोहग्रस्त हो जाते हैं अपने परिवार से, तो ये मोहग्रस्त हमारा भगवान की कृपा से ही दूर हो सकता है, हम अपने आप इसको दूर नहीं कर सकते। तो तो एक दिन शिला प्रभुपाद जब इस मोह से दूर हो गए थे, जब उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था, तब एक दिन उन्होंने एक बंगाली कविता की रचना करी वृंदावन में बैठ करके। तो बंगाली कविता जो है उसका हिंदी अनुवाद तो मेरे को अभी नहीं मिला है, उसको हम साथ साथ समझते जाएंगे। बड़ी सिंपल इंग्लिश में है। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं, उसका भजन का नाम है वृंदावन भजन। शिला प्रभुपाद ने ये बंगाली गीत गाया है। आई एम सिटिंग अलोन इन वृंदावन धाम, मैं अकेला वृंदावन धाम में बैठा हुआ हूँ। आई हैव माई वाइफ सन्स डॉटर्स ग्रैंड सन्स एवरीथिंग, मेरी पत्नी मेरे पुत्र मेरे पौत्र आदि, मेरे पास सब कुछ है। बट आई हैव नो मनी, किंतु मेरे पास धन नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे पास सब है, मेरी पत्नी है मेरे पुत्र हैं मेरे पौत्र हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। आई हैव नो मनी सो दे आर ए फ्रूटलेस ग्लोरी। तो ऐसी संतान को ऐसी पत्नी को ये मेरे लिए क्या है, इसका कोई महत्व नहीं है। कृष्णा हैज शोड मी द नेकेड फॉर्म ऑफ मटेरियल नेचर, कृष्णा ने मेरे को इस भौतिक जगत का नग्न रूप दिखाया है। शिला प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत बाहर से बड़ा आकर्षित लगता है, लेकिन जिस तरीके से एक पतंगा इस अग्नि में भस्मभूत हो जाता है, उसी तरीके से ये भौतिक जगत में हम सब तितर बितर हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान की कृष्णा है शोड मी द नेकेड फॉर्म ऑफ मटेरियल नेचर, मेरे को भौतिक प्रकृति का नंगा रूप दिखाया है। By his strength, it has all become tasteless to me today. केवल भगवान की कृपा से ही आज मेरा परिवार जनों के प्रति कोई रुचि नहीं है, सब समाप्त हो गई, tasteless हो गया केवल भगवान की शक्ति के द्वारा। और फिर प्रभुपाद बड़ा ये आगे बोलते ही हैं जो आपने सुना होगा। यस्य अहम् अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनं शने, आई ग्रेजुअली टेक अवे ऑल द वेल्थ ऑफ दोज अपॉन होम आई एम मर्सीफुल, जिनके प्रति मैं बड़ी कृपा बरसाता हूँ तो उनका क्या करता हूँ, उनकी संपत्ति का हरण कर लेता हूँ। अब प्रभुपाद कहते हैं हाउ वॉज आई एबल टू अंडरस्टैंड दिस मर्सी ऑफ ऑल मर्सीफुल, मैं कैसे वो जो सर्वव्यापक जो सर्व मर्सीफुल को क्या बोलेंगे, सर्व कृपा या सर्व अनुकंपा बरसाने वाले की कृपा को मैं कैसे समझ सकता था जब वो मेरा धन ले रहे थे, मैं नहीं समझ पा रहा था या मैं समझने की स्थिति में नहीं था। आगे प्रभुपाद कहते हैं एवरीवन हैज अबंडेंड मी सीइंग मी पेनीलेस, हर किसी ने मेरे को अकेला छोड़ दिया मुझको देख करके कि मेरे पास कोई धन नहीं है। मेरे पुत्र मेरे परिवारजन मेरी पत्नी जब देखा कि मेरे पास कुछ नहीं है तो उन्होंने छोड़ दिया मेरे को। वाइफ रिलेटिव्स फ्रेंड्स ब्रदर्स एवरीवन, दिस इज मिजरी, ये बहुत कष्टदायक बात थी, बट इट गिव्स मी ए लाफ, लेकिन ये सोच करके मेरे को हंसी भी आ रही है। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं अपने ऊपर हंस रहा हूं, मुझको हंसी आ रही है, देखो क्या भगवान ने क्या कृपा करके मेरे को इस भौतिक जगत का एक सत्य रूप दिखाया है। आई सिट अलोन एंड लाफ, मैं अकेले में बैठा हूं और प्रभुपाद जोर जोर से हंस रहे हैं, कहां वृंदावन धाम में जब प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। इन दिस माया संसार होम डू आई रियली लव, इस माया संसार में मैं किससे प्रेम करूं। प्रभुपाद कहते हैं ये माया का संसार जो लगता है ये हमारे अपने हैं, लेकिन कब ये साथ छोड़ जाएंगे पता नहीं, तो मैं प्रेम करूं तो किससे प्रेम करूं। वेयर हैव माई लविंग फादर एंड मदर गॉन नाउ। अब प्रभुपाद को अपने माता पिता का स्मरण हो आया। प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे माता पिता कहाँ चले गए, वो मेरे पिता कहाँ चले गए जो मेरे को जगन्नाथ जी का छोटा सा रथ बना करके देते थे और मैं उसको घुमाता था, मेरे को मृदंग बजाना सिखाते थे, मेरे को मंदिर में दर्शन कराते थे। अब उनको अपने माता पिता का स्मरण हो आया। एंड वेयर ऑल माई एल्डर्स हु वर माई ओन फॉक, और जो मेरे मित्र या मेरे जो परिवारजन थे वो सब कहाँ चले गए, और जो भी थे हु विल गिव मी नाउ, हु विल गिव मी न्यूज ऑफ देम, टेल मी हु, मेरे को अब उनकी कौन खबर आकर के सुनाएगा, मेरे को कौन बताएगा वो सब कहाँ चले गए। ऑल दैट इज लेफ्ट ऑफ दिस फैमिली लाइफ इज ए लिस्ट ऑफ नेम्स, केवल अब जो सब चले गए मेरे पास तो केवल एक नाम ही बाकी रह गए, माता पिता और संबंधियों के उन सब के नाम ही रह गए हैं, बाकी तो कुछ रहा नहीं। और ऐसी दशा में एक रात शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको स्वप्न में आए और कहा शिला प्रभुपाद चलो तुम संन्यास लेने की तैयारी करो, संन्यास लेने की तैयारी करो। तो शिला प्रभुपाद को अपने घर से सहयोग नहीं प्राप्त हुआ और उन्होंने संन्यास लिया। बहुत अच्छा किया, पूरे विश्व का भला किया। ये भगवान के द्वारा रचित ये खेल था जिसमें प्रभुपाद को अपने बहुत ही जो प्रिय उनके परिजन होते हैं, जो उनके परिकर होते हैं, प्रभु भगवान उनको सेवा में लेते हैं। लेकिन शिला भक्ति विनोद ठाकुर उनके 12 संतान थे और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी उसमें से एक थे, उनके संतान थे। तो ऐसा नहीं है, बद्ध जीव भी हैं संसार में और मुक्त जीव भी हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, ये दिन ग्रह भजन देखी ग्रह ते लोगो लोक भाया, चरण सीधो देखिया गंगा सुख नसीमा पाया। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। तो यहां जो श्लोक में बोला गया कि चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करता है, यानी परिवार का मुखिया अपने धन की सुरक्षा करता है और उसकी संतान आदि आकर के उसको लूट ले जाते हैं, पर इस बात को भी समझना चाहिए जो आज चरवाहा है वो कभी भेड़िया भी रहा होगा, हो सकता है। जो आज पिता है वो कभी पुत्र भी रहा होगा, उसने भी हो सकता है किसी का धन लूटा हो अपने पिता का। ये नहीं कि पिता हमेशा पिता रहेगा और पुत्र हमेशा पुत्र रहेगा। तो जो आज पुत्र है वो कल पिता, जो आज पिता है वो कल पुत्र था, तो ये तो चक्र चलता रहेगा। इस चक्र से छूट नहीं सकते, तो फिर करना क्या है। इसीलिए जब ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, उनके 100 पुत्र थे, तो उन्होंने क्या उपदेश दिया, नायम देहो देवाजाम निर्लोके कष्टान काम हते उपभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धये दस्मात् भ्रम सौख्यम त्वंतम। क्या कहा भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से, कहा हे पुत्रों इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले उकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य प्रद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो वह उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत टिकने वाला है। हमेशा अगर हमको आनंद में रहता है, अनवरत आनंद को प्राप्त करना है, तो हमारे को क्या करना है, हमारे को अपने आप को तपस्या में लगाना है। तो जितने भी यहाँ गृहस्थ जन हैं, हम लोग हैं, तो यहाँ आगे चल कर ऋषभ देव कहते हैं, देखिए अगर हमको गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं या हमारी जो भी स्थिति है, तो यहाँ पर यह श्लोक बताया गया है 5:5:18 में, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवाम न तत्स्यान् न पतेश्च न स्यान् न मोचयेद्य समुपेतम् मृत्युम्। जो अपने आश्रितों को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पद से उबार न सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं तो हमारा ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम अपनी पत्नी को, अपने आश्रित जनों को क्या करेंगे, भगवान के प्रति उनको समर्पित करना है। भागवतम में एक कथा आती है, अपना कश्यप मुनि और दिति, दिति से दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, कौन कौन से, दिति से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दोनों का वध हो गया, एक का भगवान वराह के द्वारा और एक का भगवान नरसिंह के द्वारा, नरसिंह भगवान के द्वारा। और दिति जो है वो ईर्ष्या कर रही थी किससे, इंद्र से, इसके कारण मेरे दोनों पुत्रों का वध हुआ है। और उसने क्या किया, अपने पति को बहुत सुंदर सेवा करके उसको प्रसन्न किया। तो कई दफा स्त्रियां ऐसे प्रलोभन और ऐसी प्रसन्नता करती हैं कि पति जो है न जानते हुए भी उनको वर दे देते हैं, जैसे केकई को दे दिया, किसने, दशरथ महाराज ने, बोलो तुम क्या चाहते हो, जितना मांग सकती हो मांगो, तुमको दिया जाएगा, कोई समझने की पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से तो उनको आखिर क्या करना पड़ा, दशरथ महाराज को अपने प्राण खोने पड़े। इसी प्रकार से कश्यप मुनि को भी दिति ने प्रसन्न किया और कश्यप मुनि ने कहा मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगिए आप क्या चाहती हैं। तो फिर दिति ने क्या मांगा, दिति ने कहा मुझको ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर दे। तो इंद्र किसका पुत्र था, कश्यप मुनि का ही पुत्र था, अदिति के द्वारा उत्पन्न। लेकिन दिति क्या मांग रही है कि मेरे को ऐसी संतान चाहिए जो आपके ही पुत्र का वध कर दे। अब कश्यप मुनि मन में तो चकराए कि ये मैंने कैसी पत्नी को पाला है, लेकिन बाहर से उन्होंने कहीं भी भनक नहीं लगने दी और समझ गए कि ये गलती मेरी थी। और भगवान और कश्यप मुनि ने क्या किया, बोले ठीक है देवी, जो आप चाहती हो वही होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा, आपको एक व्रत का पालन करना होगा एक वर्ष के लिए। अगर उस व्रत को करने में आप कामयाब हो गई, सफल हो गई, तो निश्चित रूप से मैं आपको ऐसा पुत्र दूंगा जो इंद्र का वध कर दे। तो कश्यप मुनि ने उस वक्त बड़ी ही बुद्धिमत्ता से कार्य किया और उसको क्या किया, एक वर्ष के लिए उसको ऐसे मंत्र, उसको ऐसा जप, उसको ऐसा तप दिया कि एक वर्ष करते करते उसके मन से सारा भेदभाव, ईर्ष्या सब लुप्त हो गई। और एक वर्ष के बाद उसने अपने उस इच्छा को त्याग दिया। तो हम सबका ये कर्तव्य है, ये हमारा जिम्मेवारी है कि हमारे जितने भी आश्रित हैं हम उनको कृष्ण भक्ति में लगाएं, ताकि इस प्रकार के वन में से हम बड़े आराम से भगवान की कृपा से और गुरुजनों की कृपा से इस भवा टवी को पार कर जाएं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, चिला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय, हरे कृष्णा।